ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नवनियुक्त तीन मंत्रियों ने किया पदभार ग्रहण, तैयार नहीं हो सकी और खंडित परियोजनाओं को लागू न करने का अर्थमंत्री रमेश्वर खनाल का निर्णय। जनजी आंदोलन में क्षतिग्रस्त हुई सभी संरचनाओं को हम खुद बनाएंगे अभियान के माध्यम से पुनर्निर्माण करने की शहरी विकास मंत्री कुलमान गिसिंग की प्रतिबद्धता। दशहरा, दीपावली और छठ को लक्षित कर खाद्य प्रबंधन एवं व्यापार कंपनी ने की सहूलियत मूल्य वाली दुकान शुरू। और इसराइल ने कहा हमास के नेताओं पर भविष्य में भी किए जा सकते हैं हमले। अब समाचार विस्तार से। तीन नवनियुक्त मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया। सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय में आज पदभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने तैयार नहीं हुई और खंडित परियोजनाओं को लागू न करने के अपने पहले निर्णय पर हस्ताक्षर किए। अर्थमंत्री खनाल ने कहा कि युवाओं की मांग और चुनाव प्रमुख प्राथमिकता है, इसलिए बिना पूर्व तैयारी वाली परियोजनाओं का काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तैयार नहीं हुई खंडित परियोजनाओं को रद्द करके फिजूल खर्च का मूल्यांकन करके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि वे आयोग के माध्यम से दिए गए अपने सुझावों को लागू करने के लिए भी तत्पर हैं। इसी तरह नवनियुक्त शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात और ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण की डेडिकेटेड लाइन की बकाया राशि वसूलने के निर्णय पर पहले हस्ताक्षर किए। नवनियुक्त मंत्री घिसिंग ने मंत्रालय में आज पदभार ग्रहण करते हुए हमारी सार्वजनिक संरचना हम खुद बनाएंगे अभियान चलाकर जेएनजी आंदोलन में क्षतिग्रस्त हुई सभी संरचनाओं के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता जताई। मंत्री घिसिंग ने कहा कि जेएनजी आंदोलन की मुख्य मांग भ्रष्टाचार नियंत्रण है, इसलिए कहीं भी अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सही व्यक्ति को सही जगह पर जिम्मेदारी देने का जिक्र करते हुए मंत्री घिसिंग ने जनता के काम में किसी भी तरह की ढिलाई न करने का कर्मचारियों को निर्देश भी किया। मंत्री घिसिंग ने यह भी बताया कि उन्हें बतौर मंत्री सेवा सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि शहीद परिवार के लिए बनाए गए कोष में जमा की जाएगी। इसी तरह नवनियुक्त गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने भी आज पदभार ग्रहण किया है। सिंहदरबार स्थित गृह मंत्रालय में आज पदभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त गृह मंत्री अर्याल ने सरकार द्वारा जेएनजी आंदोलन में मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाने और शोक दिवस मनाने सहित तीन निर्णयों पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि कब शोक दिवस मनाया जाएगा, यह निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा तय किया जाएगा। गृहमंत्री अर्याल ने यह भी बताया कि मृतकों के परिवारों को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए तत्काल 1,00,000 रूपये उपलब्ध कराए जाएंगे और शव प्रबंधन के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करने का निर्णय भी किया गया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आज ही विशेष समारोह में नवनियुक्त मंत्रियों रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिंग और ओम प्रकाश अर्याल को शपथ ग्रहण कराया था। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी ने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही आज ही पदभार ग्रहण किया है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के समक्ष पद तथा गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार के कानूनी सलाहकार और महान्यायाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता भंडारी को कल ही राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल द्वारा नियुक्त किया गया था। नेपाल के इतिहास में वो महान्यायाधिवक्ता बनने वाली पहली महिला हैं। संघीय संसद सचिवालय ने संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में लूटपाट की गई भौतिक और विद्युतीय उपकरण लगाए सामग्री वापस करने के लिए सूचना जारी की है। सचिवालय ने संसद भवन से टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, टेलीफोन, मॉनिटर, माइक, मिक्सर, फोटोकॉपी मशीन समेत विद्युतीय उपकरण लगाए चोरी किए गए सामान वापस करने के लिए आज सूचना जारी की। साथ ही इस तरह की कोई सूचना या फोटो वीडियो होने पर उपलब्ध कराने के लिए भी सचिवालय ने सभी से अनुरोध किया है और कहा है कि सूचना उपलब्ध कराने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जेएनजी आंदोलन के दौरान कंचनपुर जेल से भागे 239 कैदी लौट आए हैं। कंचनपुर जेल कार्यालय के प्रशासक रामदत्त जोशी के अनुसार लौटने वाले कैदियों में 227 पुरुष और 12 महिला कैदी शामिल हैं। जेल में बंद 28 भारतीय कैदियों में से पुलिस केवल 10 को ही पकड़ने में सफल रही है। अभी भी 18 भारतीय कैदी फरार हैं। वहीं तन्हू जेल से भागे कैदियों में से 109 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। तन्हू जिला पुलिस कार्यालय ने बताया कि पिछले भाद्र 24 गते की रात जेएनजी आंदोलन की आड़ में भागे 327 कैदियों में से अब तक 109 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह म्यागदी में जेल से भागे 52 कैदियों को पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया है। बेनी नगरपालिका 2 स्थित जिला जेल से भाद्र 25 गति की सुबह तोड़फोड़ करके 76 कैदी भाग गए थे। जिला पुलिस कार्यालय के इंस्पेक्टर सागर पौडेल ने आज 52 कैदियों को नियंत्रण में लिए होने की जानकारी दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजु दर्शन
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओ वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जनजी आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम सहित 9 सूत्रीय अपील की है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार और पीड़ित परिवारों को राहत लगाकर कामों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है। आयोग ने अपनी बातों को सार्वजनिक करते समय दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए शिष्टता और विनम्रता के साथ संप्रेषित करने, संघर्ष और हिंसा को प्रोत्साहन देने वाली अभिव्यक्ति न देने और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके और प्रक्रिया के अनुरूप शालीनता से रखने का आग्रह किया है। विकसित मौजूदा परिस्थिति में आम नागरिकों के मानवाधिकारों के उपभोग में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी कार्य करने तथा संकट की स्थिति में हो सकने वाली कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पर नियंत्रण करने का आयोग ने आग्रह किया है। दैनिक उपभोग की सामग्री और सेवाओं को सहज रूप से चलाने तथा आवागमन को सुगम बनाने पर आयोग ने जोर दिया है। निर्वाचन आयोग ने रूपनदेही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनाव से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटित किए जाने और आगामी फागुन 21 गति के लिए नई प्रतिनिधि सभा के चुनाव की तिथि निर्धारित किए जाने के साथ ही उपचुनाव को रद्द किया गया है। आयोग के सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने यह जानकारी दी। बता दें कि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयन 2074 की धारा 68 के तहत आगामी कार्तिक 17 गति सोमवार के लिए रूपनदेही क्षेत्र नंबर 3 में उपचुनाव की तिथि निर्धारित की गई थी। लगातार बारिश के कारण काली गंडकी कॉरिडोर बागलोंग खंड अवरुद्ध हो गया है। राष्ट्रीय गौरव वाली परियोजना के रूप में रहे कॉरिडोर के बागलोंग खंड स्थित बागलोंग नगरपालिका वार्ड नंबर 13 काला खोला बगर और जैमिनी नगरपालिका 8 बेल बगर में आए भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हुई है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बागलोंग के सूचना अधिकारी केशव थापा ने दी। दशहरा दीपावली लगायत त्योहारों के मद्देनजर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड ने आज से सहूलियत मूल्य की दुकान शुरू की है। इस दुकान से खाद्य पदार्थों में किलो पर 5, 7 और 10 रूपये की छूट दी जा रही है। ये बात सूचना अधिकारी माधव मिश्र ने दी। बता दें कि ये स्टोर छठ पर्व तक संचालित रहेगा। बांके में चीते के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। मशरूम चुनने जा रही राप्ती सोनारी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 सीना 5 की 45 वर्षीय लक्ष्मी थारू पर चनमुखी सामुदायिक जंगल में अचानक चीते ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये जानकारी डिवीजन 1 कार्यालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतान्याहू ने कहा है कि हमास के नेताओं पर भविष्य में भी हमले किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं मिली है, चाहे वो जहां भी हों। पिछले हफ्ते ही कतर की राजधानी दोहा में हमास की टॉप लीडरशिप पर इसराइल ने हमले किए थे। इनमें वो नेता भी शामिल थे जो इसराइल के साथ प्रस्तावित पीस डील में शामिल थे। अमेरिका समेत कई देशों ने इसराइल के इन हमलों की आलोचना की थी। इसके बावजूद नेतन्याहू ने और हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया है। यरूशलम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हर देश को अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हमास का कहना है कि इस हमले में 6 लोग मारे गए, लेकिन उसके नेता बच गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका थी, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया था, हमने ये हमला अपने दम पर किया, बस। अब मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त तीन मंत्रियों ने किया पदभार ग्रहण, तैयार नहीं हो सकी और खंडित परियोजनाओं को लागू न करने का अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल का निर्णय, जेएनजी आंदोलन में क्षतिग्रस्त हुई सभी संरचनाओं को हम खुद बनाएंगे अभियान के माध्यम से पुनर्निर्माण करने की शहरी विकास मंत्री कुलमान सिंह की प्रतिबद्धता, दशहरा दीपावली और छठ को लक्षित कर खाद्य प्रबंधन एवं व्यापार कंपनी ने की सहूलियत मूल्य वाली दुकान शुरू और इसराइल ने कहा हमास के नेताओं पर भविष्य में भी किए जा सकते हैं हमले। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।